नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सरखेत में आपदा प्रभावित क्षेत्र में चल रहे विकास और सुरक्षात्मक कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। रुद्रपुर के एक आंगनवाड़ी केंद्र में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य टीम ने बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाओं का वितरण किया। और चमोली जिले में गोविंदघाट से पंच प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था बैंड की मधुर ध्वनि के साथ हेमकुंड साहिब के लिए रवाना। कल खुलेंगे कपाट। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल और अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुए घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून जिले के सरखेत में आपदा प्रभावित क्षेत्र में चल रहे विकास और सुरक्षात्मक कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को आगामी बरसात को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। कैबिनेट मंत्री ने आपदा प्रभावित क्षेत्र में मलबे की स्थिति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को तत्काल इसके चैनलाइजेशन कार्य शुरू करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि बरसात से पहले आवश्यक सुरक्षात्मक कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करना बहुत जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की आपदा से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। श्री जोशी ने सरखेत क्षेत्र में आपदा के मलबे के चैनलाइजेशन और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए विधायक निधि से 5 से 10 लाख रुपए तक की धनराशि उपलब्ध कराने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास और सुरक्षा को लेकर गंभीर है और जनहित से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रशासन और पर्यटन विभाग की संयुक्त जांच में कई ऐसे होमस्टे सामने आए हैं जो निर्धारित नियमों के विपरीत होटल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की तरह संचालित किए जा रहे थे। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले होमस्टे के पंजीकरण निरस्त कर दिए हैं। पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने होमस्टे को बढ़ावा देने के लिए 8 कमरों तक के आवासों को भी योजना के तहत आवेदन की अनुमति दी है, लेकिन सभी इकाइयों के लिए पंजीकरण और निर्धारित मानकों का पालन अनिवार्य रहेगा।
होमस्टे में एक तो वो जो अवैध रूप से संचालित कर रहे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। दूसरी चीज, एक अच्छी बात क्या है कि होमस्टे के प्रमोशन के लिए अभी कैबिनेट ने हमें परमिशन दी है कि जो होमस्टे में जो संख्या हमारे पहले 6 तक सीमित थी, उसके स्थान पर 8 रूम तक के होमस्टे के लिए लोग अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं जो यहाँ लोकल्स। और वो ऐसे आउटसाइडर्स जिन्होंने केवल 250 स्क्वायर मीटर की जमीन ली है और उसमें अपना घर बनाया, उसमें होमस्टे चला रहे हैं, तो उनको बीएनबी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग अपना कॉमर्शियल बिजली पानी सब वगैरह यूज कर रहे थे, तो इसलिए उस चीज को लाए हैं।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
उधम सिंह नगर जिले में रुद्रपुर के एक आंगनवाड़ी केंद्र में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य टीम ने बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाओं का वितरण किया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के अग्रवाल ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत जिले में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 3,86,000 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें 281 मरीज बच्चों को उच्च चिकित्सा संस्थानों के लिए रेफर किया गया और 132 बच्चों का उपचार हुआ। वहीं 149 मामलों में उपचार जारी है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत 30 बीमारियों को कवर किया जाता है और सभी बीमारियों का निशुल्क इलाज होता है।
इसमें लगभग 30 बीमारियां कवर होती हैं, जिसमें डेवलपमेंटल डिले है, जिसमें डिसीजेज हैं, जिसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से संबंधित हैं और जिसके अंदर आपका कंजनाइटल डिसीजेज हैं, इस तरह की जो डायरिया वगैरह हैं, ये सब बीमारियां इसमें कवर होती हैं। और पूरा ये कार्यक्रम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। 0 से 6 साल तक के आंगनबाड़ी में बच्चे देखे जाते हैं, 6 से 18 साल तक के बच्चे स्कूल्स में विजिट करके देखे जाते हैं और ये कार्यक्रम बहुत ही सक्सेसफुल है और अच्छी तरह से चल।
बच्चों के अभिभावकों ने बताया कि डॉक्टरों ने उनके बच्चों की स्वास्थ्य जांच कर दवाएं दी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से उन्हें काफी लाभ मिला है।
जी, हमारे बच्चे की तबीयत खराब रहती है, इसकी इसका वजन नहीं बढ़ता, इसकी तबीयत खराब रहती है, खाता नहीं है, इसलिए हमें इन्होंने बुलाया था आंगनवाड़ी वाली ने, तो हम यहाँ पर आए, दिखाया, इन्होंने दवाइयां दी और चेकअप के लिए बोला, कहा जिला अस्पताल आओ और आपके बच्चे का इलाज हो जाएगा। एक बच्चा बोलता नहीं है, इसके लिए भी लिखा उन्होंने, कहा वहाँ पर लेकर आओ, इसे भी आराम हो जाएगा।
आंगनवाड़ी में मेरी मोनोमिसिस बच्चों को लेकर आई थी, यहाँ बच्चों को डॉक्टर साहब ने देखा है, चेकअप के लिए हॉस्पिटल बुलाया है, इसका इलाज वहाँ पर होगा और प्लस लोगों ने यहाँ पे दवाई उनको रिसीव करी है।
चमोली जिले में स्थित हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए आज पंच प्यारों की अगुवाई में पावन निशान साहिब की अगाध श्रद्धा और बैंड बाजों की मधुर धुनों के बीच सिख श्रद्धालुओं का पहला जत्था गुरुद्वारा गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुआ। हेमकुंड यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पूरे यात्रा मार्ग पर पुलिस बल तैनात किया गया है और पहले जत्थे के साथ विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है, ताकि प्रत्येक श्रद्धालु सुरक्षित वातावरण में अपनी यात्रा पूरी कर सके। यह जत्था आज रात घांघरिया स्थित गुरुद्वारे में विश्राम करेगा। इसके बाद कल विधि विधान और अरदास के साथ हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित मासिक स्टाफ बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध, पारदर्शी और जनहित केंद्रित कार्यप्रणाली अपनाने के निर्देश दिए। बैठक में राजस्व वसूली, चारधाम यात्रा व्यवस्थाएं, अवैध खनन, पेयजल आपूर्ति और जन शिकायतों के निस्तारण सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई।
जो मासिक बैठक थी उसमें सभी SDMs, तहसीलदार और जो हमारे अन्य स्टाफ होते हैं कलेक्ट्रेट के, सभी के साथ में ये बैठक की गई। उसमें मेन उद्देश्य यही रहता है कि जितनी भी जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उसका तत्काल निराकरण किया जाए, उसका समीक्षा भी किया गया और साथ में हमारे जितने न्यायालय के केस होते हैं उसकी भी पूरी समीक्षा की गई और साथ में पूरे जिले में हमारी कानून व्यवस्था या राजस्व संबंधी, चाहे वो खनन हो, आबकारी हो या पुलिस से संबंधित केसेस हैं, उन सबका भी रिव्यू किया गया। और इसके अतिरिक्त जो अन्य छोटी छोटी हमें आजकल जैसे कुछ पेयजल की समस्याएं हैं या फिर अभी हमारा SIR का काम शुरू होने वाला है या सेंसस का काम अभी चल रहा है, इन सभी चीजों का भी रिव्यू किया गया।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सरखेत में आपदा प्रभावित क्षेत्र में चल रहे विकास और सुरक्षात्मक कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। रुद्रपुर के एक आंगनवाड़ी केंद्र में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य टीम ने बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाओं का वितरण किया और चमोली जिले में गोविंद घाट से पंच प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था बैंड की मधुर ध्वनि के साथ हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुआ। कल खुलेंगे कपाट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।